मतलब ये यह है कि द्वारका से या कुरुक्षेत्र से सब लोग मिलकर के गोपी भाव से भारत को खेच करके वृंदावन में ले आ रहे हैं, इसी भाव से कलरवन निकले। तो वहाँ पर एक दिन पहले मैंने आज के दिन इंद्रदुम्न राजा की स्त्री का नाम था गुंडीचा, उन्हीं के नाम पर उस मंदिर का नाम रखा गया वृंदावन वाला मंदिर। तो जिस ठाकुर जी जिस मंदिर में रहेंगे 9 दिनों तक उनकी पूजा होगी, उसको एक दिन पहले साफ किया जाता था, क्योंकि मंदिर बहुत विशाल है। तो पहले तो राजा के नौकर इत्यादि जाते थे और उसको साफ करते थे, किंतु जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ आए तो उन्होंने वो सेवा को अपने आप ग्रहण कर और लाखों भक्तों के साथ में वो जाते और अपने हाथ से मंदिर के बाहर भीतर सर्वत्र झाड़ू लगाते साफ करते थे, एक एक घास कहीं निकल आए जाए उसको भी पार करते और फिर लाखों घरों से उसके पार और भीतर सब साफ करके मतलब कहीं दाग लगाए सिंहासन पर और उसको अपने इस पहिवास उसको कहते हैं पहिवास और उत्तरीय उत्तरीय से उसको साफ करते थे। साफ जाने के बाद दूसरे दिन जगन्नाथ जी उसमें प्रवेश करते थे और वहीं पास करते थे। इसलिए आज का दिन के गुंडीचा मंदिर महाप्रभु कहा रहा है। महाप्रभु जी ने शिक्षा दी ठाकुर को बैठाने के लिए सबसे हृदय रूपी मंदिर को मार्जन करना। उन्होंने कहा ये मंदिर जो है ये कौन है, असल मंदिर कहाँ है ठाकुर जी का? हृदय में। हृदय में ठाकुर जी को बैठाना चाहिए। यदि हृदय में बैठा लिया तो जहाँ वो रहेगा वहीं पर ठाकुर जी का मंदिर और सब समय उनके पास में। इसलिए हृदय मंदिर को साफ करना है। इस मंदिर में धूला या टुकड़े टुकड़े इधर उधर सब पड़े हुए रहते हैं, भीतर रहते हैं, दीवारों पर भी फूले फूल हो जाती है। एक वर्ष के अंदर में धोया और साफ नहीं किया गया, कहीं कुछ गंदा लगा हुआ है, उस गंदापन को निकालना है। और इस हृदय में बहुत गंदी चीजें भरी पड़ी हैं। एक तो ऐसे ही ये शरीर है मैला, इस शरीर को यदि चमड़ा हटा दिया जाए तो देखो जैसे क्या कैसा सुंदर लगे, आप भी सुंदर भी रहेगा। और ये चमड़ा यदि हटा दिया जाए और रक्त मांस पैखाना रक्त की बदबू से भरा पड़ा, कभी भगवान बड़े दया उसके हृदय में उनसे हृदय में रहते हुए भी उससे दूर उसको निर्मल करना है। ये मंदिर जल्द इससे निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अभी 400-500 हजार रुपया खर्च करेंगे मजदूर ही इसको साफ करके एकदम ठीक ठाक बनाए, उनको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये विश्व ब्रह्मांड का कोई भी मिस्त्री ले आओ, बड़े बड़े इंजीनियर भी लाओ, डॉक्टर भी लाओ, तो अभी इसका निर्माण करना बड़ा भारी कठिन है। कोटि कोटि रुपये भी दिए जाए तभी यह साफ होगा कि नहीं, ये मशीन वो मैल क्या है। पहले एक चेतन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है बदला करते तब इसमें चेतन चेतन का प्रसंग है, हम पाठ करेंगे और प्रसंग के अनुसार में यदि किसी ने अपने हृदय को मार्जन किया साफ किया सुथरा किया तो ठाकुर जी बैठेंगे और नहीं तो कोटि कोटि जन्मों में भी ठाकुर जी नहीं बैठे, बल्कि उसके लिए दंड मिलेगा। जो गुरु वैष्णव की बातें सुन करके भी और निर्मल हृदय को नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को सुन करके अपने हृदय को निष्कपट और निर्मल बनाए। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हमारे हृदय में क्या क्या मैल है जरा सुनो अच्छी तरह से, और आज ही कान कपड़ता के प्रतिज्ञा करो, ये सब जो मैल है हम लोग इसको हटा देंगे सदा के, और कभी भी वो मैल नहीं आने। अमर जीवन सदा पापे रखा नहीं तो तुम निर्णय। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं परे देख दिया क्या वो पा, हमने अब तक दूसरों को उद्वेग दिया है, अपने अपने विचार करके देखो, जो अपने खाने के लिए, अपने पहनने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने बचने के लिए, अपनी उन्नति के लिए दूसरों को उद्वेग दिया। एक गिलास पानी लाना तो बैठ एक गिलास पानी लाना, तुम नहीं ला सकते, ला सकते कि नहीं, कोई भी बात गर्मी लग रही है, इधर आ जा इधर आ जा, जरा पंखा चल दो तो तुम नहीं चल सकते, दूसरों को बेकार के लिए तंग करते हैं, तो यही नहीं परे उद्वेग। उद्वेग माने क्या, दूसरे के चित्त को अशांत करते नहीं, उद्वेग कभी मत करो, अपने सुख के लिए दूसरों को उद्वेग मत। भजन करने का लिए पहले ये प्लेटफॉर्म बनाना है चबूतरा, जिस पर ठाकुर जी रहेंगे, खबरदार प्रतिज्ञा नहीं करो, अपने लिए दूसरों को उद्वेग नहीं देना। याची जिगरे क्लेश, कैसे क्लेश दिया, एक बेटा या बेटी माता के गर्भ में आया, वो माता को गर्भ में रख करके कष्ट देती है कि नहीं, या बेटा है कि नहीं, जैसे तैसे कष्ट देते। हम लोगों ने कितना अपनी मैया को बाप को कष्ट दिया है, याद रखो, पृथ्वी को कितना कष्ट दिया है, पृथ्वी को गंदा बनाया है कि नहीं, पेड़ों को कष्ट दिया है कि नहीं, जीव जंतुओं को कष्ट दिया है कि नहीं, इस तरह से सब समय हम लोगों ने दूसरे जीवों को अपने लिए कष्ट दिया। निजे सुख लागी पापे नहीं डरते, अपने सुख के लिए पापों से डरते हैं, दयाहीन स्वार्थ पर दया नहीं और स्वार्थ पर है। मान लें कि हम एक दुकान में बैठे हैं, अपने बेटे के लिए तो कमाई कर रहे हैं, किंतु उसमें अनाप शनाप जो काम आते हैं वो दूसरों को कष्ट देता है कि नहीं, करते हैं कि नहीं, बात क्यों करते करते हैं, स्वार्थ पर है। उसी तरह से समस्त विषय में भी जान कुमार वकील वकालत करता है, अपने बच्चों का पेट भरता है, किंतु दूसरों से कैसे हड़पता है, स्वार्थ है कि नहीं। डॉक्टरों को देख जो जो धन कमाने वाले हैं सबका ऐसा है, एक भीख मांग रहा है उसको थोड़े से ही काम चल जाएगा, क्योंकि झूठ बोल करके इधर से कर करके दूसरों से अधिक भिक्षा मांग करके फिर उन्हीं के हाथ में बेच करके पैसा जमा रहा है, तो ये क्या हुआ। इस तरह से अपने सुख के लिए हम पापों से नहीं डरते हैं। ठाकुर जी का नाम करके दूसरे लोगों का नाम करके दयाहीन होकर के और स्वार्थ पर होकर के दूसरों को भी क्लेश देते हैं, और उससे भयंकर क्या और सुख है दुखी, देखते हैं कि पड़ोस वाला दुखी है तो हम सुखी होते हैं, और यदि कोई जरूरत होगी बिना किसी कारण के ही। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं उत्तर तक का देंगे दक्षिण, बिना कारण के झूठ बोलते हैं, सदा मिथ्या, जरूरत नहीं है कभी बोलते हैं। पर दुख सुख कर, और पर दुख दूसरा यदि दुखी है तो उसमें हम सुखी होते हैं, और दूसरा यदि सुखी है तो उसको देख करके दुखी। झगड़ा किस लिए? इसलिए तो झगड़ा, ये सब हृदय की मलिनता है। ये झाड़ू से कैसे साफ होगा, कैसे होगा, इसको साफ करना है। यदि भगवान का वर्णन करना है तो ये सब शिक्षा है। दूसरों के सुख में सुखी हो, दूसरों के दुख में दुखी हो, स्वार्थ न रहे, बेकार का झूठ मत बोलो। जब झूठ बोले तो भगवान के लिए बोलो, भगवान के लिए बोलो, तब तो हो सकता है। और भगवान भी नहीं कहते कि तुम हमारे लिए झूठ बोलो, किंतु ऐसी कुछ भगवान के संबंध में कुछ बातें आ जाती हैं, जैसे कि वसुदेव जी को झूठ बोलने का कारण हो गया, कृष्ण को बचाने के लिए, ऐसी कोई समस्या है तो बोलो, अन्यथा झूठ मत बोलो। झूठ दो होता है, एक होता है व्यवहार और एक होता है परमार्थी। कभी कभी व्यवहारिक जो झूठ है वो परमार्थिक सत्य के लिए जिस झूठ को हम बोल सकते हैं, परमार्थिक सत्य के लिए, जैसे एक गाय को बचाना है तो हम कहते हैं इस गली में गाय नहीं है, जो घर में उसको छिपा रहे, दूसरों की प्राण की रक्षा करने के लिए कर सकते, अन्यथा झूठ मूठ नहीं बोलना चाहिए। अशी शतम नाचते माथे में क्रोधी दंभ परायण, ये सब मैल है जो कहते अशेष कामना, नाना प्रकार की कामनाएं, कैसी कामनाएं, भक्ति की नहीं, उसको तो छोड़ दो, संसारिक कामनाएं, मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा। अभी पढ़ रहा है छोटा सा बच्चा, मैं बहुत बड़ा, लड़की की कामना क्या, अच्छी तरह से पढ़ लिख जाऊंगी, अच्छे घर में शादी होगी, खूब शान से रहेंगी, सब पर दुकान चलाएंगी, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे होंगे, पढ़े लिखेंगे, कोई इंजीनियर डॉक्टर बनेगा और हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा, बस सिनेमा में जाएंगे और सब घूमेंगे बड़े आराम के साथ में, जो इच्छा होगी सो ही खाएंगे ना, और क्या काम, ऐसी सब कामनाएं। लड़कों में भी ऐसी कामनाएं होती हैं, अशेष एक दो कामना नहीं, कोटि कोटि कामना। क्रोधी दंभ परायण, बात क्रोधी, क्रोध भी दो प्रकार का, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। कुछ लोग अव्यक्त क्रोध, क्रोध होता है भीतर भीतर रख ले, तो वो क्या होता है, नासूर बन जाता है। नासूर किसको कहते हैं, भीतर भीतर खाव बढ़ जाता है, यदि क्रोध हो गया थोड़ा सा क्रोध कर 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 फिर समाप्त कर दिया तो वो तो ठीक है, आक्रोध को भीतर रखाना, पीते 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 नासूर बन जाएगा, पदंदर वो अच्छा नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा, एकदम जीवन को ले लेगा। इसलिए अव्यक्त से व्यक्त वाला क्रोध कुछ अच्छा, किंतु ये भी बहुत डेंजरस है, बहुत खराब है, ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यक्त अव्यक्त किसी प्रकार का क्रोध हो एकदम न रहे, ये क्रोध जाना बड़ा भारी मुश्किल है। यदि कामना है ना अशेष कामना धन रहेगा तब तक क्रोध रहेगा, जिसकी सब कामनाएं निकल जाएंगी उसको क्रोध नहीं। मध्यम अधिकारियों को जो वैष्णव है, ये जो कनिष्ठ है उनको तो रहेगा, मध्यम अधिकारी है वो क्रोध को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, और उत्तम अधिकारी कोई आप कामना ही नहीं। अभी हम लोग के अंदर में कामना है जो सब लोगों को कृष्ण भक्त बनाए, इन्हें जब देखते हैं कि इसके विरोधी कोई बात देखते हैं तो हम लोगों को भी क्रोध आ जाता है, तो किसी हद तक तो ये ठीक है, किंतु ये भी उचित नहीं। और उत्तम अधिकारी कोई कामना नहीं है, ईश्वर ने तो नहीं बताया। तब उत्तम अधिकारियों को भी सुखदेव जैसे गोस्वामी को भी क्रोध हो गया, नारद जी को भी हुआ, क्यों हनुमान जी को भी हुआ। और भगवान का विद्वेष यदि कोई करेगा तो उसके कल्याण के लिए ही क्रोध करेगा। इसलिए क्रोध को भजन करने वाले व्यक्ति को क्रोध को एकदम झाड़ू मार करके निकालना। सबसे हमारा शत्रु ये क्रोध और काम है, काम रहेंगे क्रोध भी नहीं है। इसलिए कामनाओं को हटाओ। मैं बहुत बड़ा कार्य भक्त हूं या भक्ति हूं और किसी ने कुछ कह दिया क्रोध हो गया। इसलिए जब मंगल की आकांक्षा करने वाले व्यक्ति हैं उनको क्रोध को छोड़ना चाहिए। दंभ, दंभ माने क्या, अभिमान, अहंकार। मैं कुछ कुल में जन्मा हूं, मैं धनी हूं, मेरे अंदर में ये सब गुण है, इसलिए दूसरे हमारे अधीन रह करके चलेंगे। यदि प्रतिवाद किया तो क्रोध आ जाएगा, हमारी इच्छा के विपरीत हुआ बस क्रोध आ जाएगा, उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, अच्छा विचार करने की बुद्धि नहीं रहेगी। जब क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या बुरा है, क्या हमारा मंगल है, किसमें कल्याण होगा किसमें नहीं, यह बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और अंत में विनश्य उनका विनाश हो जाएगा। इसलिए क्रोध को, काम को दूर रखो यदि भजन करने की इच्छा है, अन्यथा जहन्नम में जाओ कोई बात नहीं। विशेष करके जब यहाँ आओ तो अच्छे अच्छे गुणों को सीखो और उसको अपनाने की चेष्टा करो। मद मत सदा धन के मत में क्रोध किसको अधिक होता है, जिसको कुछ शारीरिक बल है ना उनको, जिनको कुछ धन है और जिनको कुछ गुण है, जिसको कुछ सौंदर्य है, इन लोगों का भी क्रोध होता है। ये सब चीज इसीलिए बतलाया गया भागवत में,
जन्म
जन्म ऐश्वर्य सुंदर श्री श्री भी जन्म मैंने उच्च कुल में जन्म, उसको कुछ कहा था ना तो उसको जल्दी से क्रोध हो जाए, हमारा अपमान कर दिया। अभी कहेंगे नंदमल जी इनके पास में खूब रुपया होता है, नंदमल जी नंदू जरा इधर में, इधर में बैठना, उधर से रुक जाओ, इसलिए कहा ये पर विचार नहीं रहेगा। तभी ये किसलिए सुनते हैं, गरीब आदमी धन उतना अधिक नहीं, राष्ट्रपति के बेटे के रूप में इनका जन्म नहीं हुआ और सुंदर भी खूब नहीं, अब तो बूढ़े हो गए। और सुनते सुनते उपदेश अब कुछ संशयता भी आ गई, नहीं तो इतना ताना था कि अब फिर मठ में नहीं आएंगे। इसलिए चार चीजें हैं, क्या जन्म उचित में जन्म ऐश्वर्य धन रुपया पैसा और विद्या और
श्री
श्री मैंने एक अत्यंत सुंदर लड़का है या लड़की है उसको कुछ कहा तो ना एकदम साथ ही साथ बिगड़ गया। इसलिए इस मदों में मत जो है वो विषय में मोहित है और उनमें हिंसा गर्व विभूषण, वो हिंसा दूसरों को कष्ट देना मारना जान से मार डालना और गर्व में सब समय अपने को समझते हैं कि यही हमारा भूषण है, किंतु है नरक का द्वार, आज उसी सबको ढूंढना है। और सब बड़ी बातें क्या, निद्रा अवश्य होता, देखो जैसे निद्रा कितनी आती है, आलस्य कितना है, नींद आती है मैं तो 13-14 घंटा सो लेता हूँ, 3 दिन में कुछ सो लेता हूँ। भाई ये भजन में और सांसारिक कामों में भी ये बड़ी फर्क करता है। हमारे पंडित जी हैं बहुत कम सोते हैं और भी यहाँ पर भी लड़कियों में भी कुछ ऐसी हैं जो बहुत कम सुनती हैं, महिलाओं में भी, तो उनका भजन होता है। आज अधिक स्वयं में निद्रा और आलस्य में घर में झगड़ा होगा, कोई लड़की मान ले कि 8 बजे तक सो रही है, घर वाले झगड़ा नहीं करेंगे, अभी तक सो रहे हैं, इसलिए विवाद होगा। यहाँ पर मठ में भी इसीलिए कुछ लड़के चले गए मठ छोड़कर, वो 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक सोते थे, आरती में नहीं आते थे, कोई ना कोई जरूर होता है जाते, सभी लोग आते हैं आरती में, चलो महाराज जी वही सो रहा है, तो हम कहेंगे नहीं तो दूसरे बच्चे ही जाकर के तंग करेंगे, अंत में झगड़ा लड़ाई हुई इसके बाद चले गए। इसलिए निद्रा आलस्य हत भक्ति विनोद ठाकुर जी का सुकार्य विरत, अच्छे कामों में चित्त नहीं जाएगा, शुभ कर्मों में मंगल कार्य जो कार्य है उसमें मन नहीं जाएंगे, इसलिए निद्रा आलस्य को छोड़ो। आज के दिन से आज गुंड का मंदिर हृदय रूपी मंदिर से आलस्य को छोड़ो, पर ये आलस्य कैसे छूटेगा महाराज, कैसे छूटेगा? एक आदमी 8 बजे सोता है, उसको हमने कहा कि देखो भाई 4 बजे जब भी हमारे पास में आएगा तो तुमको 1,00,000 रुपया हम दे देंगे, सोए रात 4 बजे भी आ जाएगा कि नहीं आएगा कि नहीं, जरूर आ जाएगा। एक लड़का बहुत ही आलस्य और निद्रा में रहता है और परीक्षा दिया और देखा जैसे इस वर्ष हम पास नहीं हुए, किसी तरह से उसको मालूम हो गया कि हमारी कॉपी गई है उस व्यक्ति के पास, उस मास्टर के पास, मास्टर ने कहा कि यदि 4 बजे भोर में आएगा तो तुमको हम पास करा दें, जाएगा कि नहीं, सोएगा कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं जिसको ये जरूरत है भगवान का भजन करना, जीवन में उन्नत होना, वो आवश्य प्रमात्म को छोड़े, अच्छे कार्यों में ही लगो, जो जगत के लिए उपकारी है हमारे लिए उपकारी है उनको कहते हैं सुकार्य। हम लोग तो वैसे कर्मों को भी नहीं करते जिसमें सुकार्य करते हैं, भगवत संबंधी कर्म, वैष्णव सेवा, गुरु सेवा, भगवान की सेवा, और उसमें भी तारतम्य है, ये सुकार्य है। आज का दिन इसमें जो सम्मिलित हुआ सुकार्य, किस लिए? चुन चुन करके जितनी हैं धूल कणा और जो कुछ जमी है उसको हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, जैसे देखो ये सब चीजें है इसको निकाल, और पॉइंट आउट करने पर भी यदि नाम ने कोई निकाले तो किसका दोष है? अपना दोष है, प्रतिष्ठा लगी असार्थ है, प्रतिष्ठा के लिए हम क्या नहीं करते हैं, गंदी से गंदी बातों को करते हैं, साक्ष्य आचरण लोभ भावता सदा काम, बड़े लोभी हैं किस चीज के, दूसरे चीजों के, दूसरे व्यक्तियों के पास में जो आकर्षक चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है उसके लिए लोग, गंदी गंदी चीजों के लिए लोग, काम के लिए लोग, अर्थ के लिए लोग, पूजन। भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज के दिन हमको हमारे हृदय में ये सब जो चीजें हैं गंदी चीजें हैं, मैं ऐसा दुर्जन हूं, सज्जन अवर्जित, सज्जनों का संग नहीं, दुसंग में रुचि होती है, अच्छे व्यक्तियों के संग में रुचि नहीं होती, शुभ कार्य अपराधी निरंतर, अपराधी अपराधी माने नमापराधी, सेवापराधी, ये सब अपराध, सब शुभ कार्य सुन्न सदा अनर्थ मना, शुभ कार्य तो करते में रुचि नहीं, और यदि किसी ने मना कर दिया कि शुभ कार्य में लगो और अशुभ मत करो तो बिगड़ जाते हैं, सदा अनर्थ मना, अनर्थ मन में अनर्थ में ही मन लगा, गंदी गंदी बातों में, काम में, क्रोध में, लोभ में मन लगा रहा है, दूसरों की बुराई में मन लगा रहता है, नाना दुखे जर जर, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, दूसरों को जो अशांति देता है उसको अशांति होगी कि नहीं? एक छोटा सा लड़का दो वर्ष का तीन वर्ष का लड़का नंगा खेल रहा है और उसने एक पिकनी को पकड़ लिया खेल में और एक नारियल का झाड़ वहाँ पड़ा था उसमें से सीख पड़ी थी लेकर के छेद दिया, छेद करके खूब खुश हो रहा है और वो छटपट छटपट कर रहा है और ये बच्चा बड़ा खुश हो रहा है। घर वाले देख करके भी कुछ कह नहीं रहे, वो लोग भी बड़े खुश हैं, अपने अपने काम में लग गए हैं। अब ये तो हो गया, कुछ दिनों के बाद में जब वो बड़ा हो गया तो साधु बन गया। साधु बन करके कहीं पर वो था बैठा हुआ और चोरों ने चोरी की, चार चोर, और चोरी करके माल उसके पास पीछे में जंगल में छिपा दिया। कुछ दिनों के बाद में पुलिस को पता लग गया और उसको अरेस्ट कर दिया, चोरों को भी और साधु को भी, जो साधु ने के पास में माल पकड़ा गया इसके घर में, इसके बगीचे में, और पांचों को ये हुआ हुक्म सूली चढ़ा दिया। सूली चढ़ाना फांसी, चारों चोरों को सूली चढ़ाया वो मर गए और साधु को चढ़ाया सूली पर, माने एक बल्लब लोहे का, बस बीच में उसको खड़ा कर दिया और छेद करके नीचे से एकदम ऊपर चढ़ा, चारों चोर तो मर गए और ये उस पर चढ़ा दिया, छेद तो गया किंतु मरा नहीं। नियम है कुछ मिनट का समय दिया जाता है, इसमें यदि नहीं मरा ना उतार दिया जाता, तो ये मरा नहीं, छटपट छटपट डरने लग गया, रक्त एकदम निकलने लग गया, भीषण यंत्रणा हुई, इसके बाद में मरा नहीं। तराजन का जो उसको उतारो, मालूम होता है कि निर्दोष व्यक्ति है, तो उतारा गया और उसको निकाल करके चिकित्सा किया, वो ठीक हो गया। अब वो जम के पास में गया, महाराज हमारी ये दुर्दशा क्यों हुई, हमने तो कोई इस जन्म में पाप नहीं किया, बतलाइए तो ऐसा क्यों हुआ, मैं तो जन्म से ही साधु हूं। कहे तुमने दूसरे जन्म में, पहले जन्म में छेद कर दिया एक तितली को, तो उस समय तो मैं नाबालक, मैंने छोटा सा बच्चा था। न्याय न्याय है, उन्होंने कहा कि मैंने ठीक किया और सचमुच में ऐसा, तो दूसरों को जो दुख देगा इस जन्म में, दूसरे जन्म में दुख नहीं होगा, जब एक ऐसा एक छोटा सा बच्चा ना बूझ भी और उसको कष्ट दिया तो उसको इतना कष्ट होगा, तो इन्होंने अभी संपात कर दिया उसको, जाओ तुम भी मनुष्य होकर के आएगा, तुमको भी ऐसा दुख कुछ होगा तब समझेगा, ऐसा दुख सुख समझता है अपने मन से, ऐसा न्याय करता है। तो वही विदुर जी हुए, इसलिए विचारक थे वो, इसलिए भाई बचपन से भी किसी को दिल मत दुखाओ, किसी को कोई कष्ट मत दो, काम भी मत बनो, दूसरे की वस्तु चोरी मत करो, ऐसे शुभ कर्म में लगो, इसी के लिए कह रहे हैं ये भक्त विनोद ठाकुर। भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं पाठक एक उपाय विहीन ताते दिन अकिंचन, अब तो मैं असहाय हूं, वृद्ध हो गया, हाथ पैर नहीं चलते, दूसरों के सहारे चलना पड़ता है, हो प्रभु मैं अत्यंत दीनहीन हो गया, इसलिए प्रभु मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, आप हमारा कल्याण कीजिए। अभी हम लोगों के लिए समय है, इन चीजों को दूर रख करके आज झाड़ू देना है, यही झाड़ू है वचन, झाड़ू से अपने हृदय को साफ कर, तब ठाकुर जी हृदय में आएंगे, अन्यथा लाख खरी नाम करो कुछ भी करो नहीं होगा। चैतन्य चैतन्य में बात कर रहा था, दिन में यह पूरी की बात है। महापुरुष वहां के राजा थे, जिस समय में चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए थे। महाप्रभु जी अभी प्रथम वर्ष में आए थे, अभी बाल संन्यासी हैं, 24-25 वर्ष की उम्र है, 24 वर्ष में घर छोड़ दिया और छोड़ करके संन्यास लेकर के पुरी में आए। इसी बीच में दक्षिण प्रदेश भी घूम आए, राय रामानंद से भी बातचीत हो गई है और उसके बाद में रथ यात्रा आरंभ हुई। एक दिन पहले की बात है, महाप्रभु जी ने कहा नौकर चाकर जा रहे हैं प्रतिवर्ष मार्ग होने के लिए, मंदिर को साफ करने के लिए, यदि यह सेवा हमको मिल जाती तो अच्छी बात है। इसलिए महाराज के जो पुरोहित थे काशी मिश्र, उनको कहा यह सेवा हमको मिले। राजा सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और उनको सेवा दी। महाप्रभु जी को काशी मिश्र ने कहा कि आपको क्या क्या चीज की जरूरत है। उन्होंने मुझको सम्मार्जनी चाहिए, सम्मार्जनी और खड़ी चाहिए। उन्होंने कितने बोझे बोझा नारियल का झाड़ू सम्मार्जनी मंगा और हजारों खड़े लगा मंगा। महाप्रभु अपने भक्तों को बुलाया, उस समय में गौड़ीय वैष्णव भी वहां पर थे, कुड़िया के भी बहुत से और असफल लोग थे, और कहा जी अभी चलना है गुंडीचा मंदिर मार्जन करने के। सब भक्तों को बुला करके जब खड़े हो गए, अपने हाथों से एक एक झाड़ू और एक एक घड़ा प्रधान प्रधान लोगों को दिया, साधारण लोगों को नहीं, प्रधान प्रधान जो भक्त के महापुरुषन करने वाले और उनके तत्वों को जानने वाले, उनको झाड़ू और एक घड़ा और सबको अपने हाथों से तिलक लगाया और चंद माला दिया सबको। साधारण रूप में ऐसा नियम है, कोई सभा इत्यादि होती है तो कोई एक व्यक्ति साधारण स्वरूप करके सब लोगों का माल्या आकर्षण करता है, और यहाँ पर स्वयं प्रभु ही चैतन्य महाप्रभु ही उठ करके सबको अभिवादन किया और सबको माला लगाया और तिलक लगाया। इसके बाद में कीर्तन आरंभ हुआ और मृदंग और करताल लेकर के हजारों भक्त लोग झाड़ू बगल में ले लिए और एक एक घट ले लिए और लेकर के चल पड़े। अब वहां पर गए, आज भी वहां मैं आज से 40 वर्ष पहले जब समय मैं एकदम आया था, करीब करीब 25-26 वर्ष की उम्र, गुरु जी के साथ में पहली बार गया था, उस समय देखा इतने असंख्य लोग, कम से कम तो 25-30 दल की तरफ सब लोग खड़े हैं चारों तरफ, कौन आएगा जाएगा पीछे जाएगा, जैसे कि कुंभ का मेला होता है ना, उसमें आगे चलने आगे स्नान करने की विधि होती है कि कौन करेगा कौन करेगा, तो वहाँ पर भी ऐसी है। तो गौड़ीय वैष्णव लोग महाप्रभु के प्रिय हैं, इसलिए गौड़ीय वैष्णव को सबसे पहले प्रवेश कर दिया। गौड़ीय वैष्णव में भी अब बहुत से दल हैं, एक दो दल हैं सिद्धांत ये, तो उसमें से सभी लोग हजारों हजारों लोग कीर्तन मृदंग लेकर के हम लोग जब गए तो इतना चार मृदंग और ढोल करताल बाजा ढाजा सांसद और कम से कम तो 700-800 आदमी हम लोग गुरु जी महाराज जी के साथ में प्रवेश किया। उसमें प्रवेश करने के बाद में भीतर गए, आंगन है चारों तरफ से, उसके बीच में मंदिर है, बहुत विशाल आंगन, हजारों हजारों आदमी झाड़ू लेकर, पहले तो ये सब पाठ हुआ और पाठ होने के बाद में सभी लोग को झाड़ू दे दिया, कीर्तन हो रहा है,
মাঝখানে নিষেধ করলেন,
झाड़ू लेकर के साफ करने लगे। तो किस रूप में हुआ उसी को बतला रहे हैं महाप्रभु जी। मंदिर के भीतर में प्रवेश किए, गुंडीचा मंदिरे गेला करीते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लैया करीला सुधन, झाड़ू लेकर के शोधन किया, साफ किया, एक साथ में एक पंक्ति में हजारों हजारों लोग साफ करने के पीछे दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, सब साफ कर। कुछ लोग वहां पर ऐसे भी होते हैं, झाड़ू तो ले लिया, थोड़ा सा ऐसा किया और फिर दूसरे को दे दिया, काम चोर होते हैं। तो महाप्रभु के समय में भी ऐसे थे, अभी नए हैं उस समय भी थे। उन्होंने मार्जन से पहले धोया, साफ किया, इसके बाद में दोबारा हुआ पूरा भीतर बाहर सब, जितनी चीजें थी वो सबको एकदम साफ किया। मंदिर हम लोग जब गए थे तो मंदिर तब तक तो हजारों वर्षों का पुराना, उसमें घास भी कहीं निकल रहा। कुछ लोग खुरपी होती है, खुरपी से घास को निकाल और एकदम साफ। इसके बाद में दूसरी मंडली आई, वो साफ हो, तीसरी मंडली आई, करते करते एकदम पूरा मंदिर साफ हो गया। भीतर मंदिर ऊपर सफल माजी गए, बारह मंदिर का भीतर में सबको करीब करीब एक मील के अंदर में वो मंदिर है, गुंडीचा मंदिर करीब करीब होगा। बाहर भीतर साफ करना शर्त नहीं, और उसका खंड खंड है, कितने खंड है, रसोई घर अलग, रसोई घर में कितने चूल्हे हैं, और एक एक चूल्हे में सात आठ आठ चूल्हा, एक चूल्हे में ऐसा मूल चूल्हा, उसमें एक जगह लकड़ी देंगे और उसमें छेद है, उस पर एक खंडिया, उस पर एक खंडिया, उस पर एक खंडिया, छह सात खंडिया, बीच में एक खंडिया, साइड में इधर उधर में, मान लें कि सात, एक चूल्हे में सात रखने का जगह है तो सात सात है, पचास ये हंडिया बैठ गए। और कैसे पानी वजन से देते हैं माप कर, जो दाल और चावल उसके ऊपर में हाँडी पर हाँडी सब रखा है, किंतु अपने आप मसाला तौसाला जो कुछ देना है एक ही समय में दे दी, एक कारण कैसी कला होती है, इतना अपूर्व होता है। जब कोई दाल और चावल खाए बस हो जाएगी, हम तो जाते हैं तो वही जरूर वहां पर गुजारता है। तो वहां पर महाप्रभु जी माज रहे हैं, उसको भी धो रहे हैं, लिप रहे हैं, कूप रहे हैं, कहीं कोई अछूता नहीं रखा। सब लोग कर रहे हैं क्या, हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण।
तो पूरा पूरा नहीं करने पर भी
कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण, झाड़ू दे दो हमको, कृष्ण कृष्ण तुमसे थक गए हो। और जबकि धो रहे होने लगेंगे ना, कृष्ण कृष्ण हमको दे दो घड़ा का पानी, वो उसको दे रहा है, उसको दे रहा है, और पानी कहाँ से आ रहा है, इंद्र लाखों आदमी लग गए हैं, लाइन लग रही है, और कितने छत्तर से कितने टूट रहे हैं फूट रहे हैं, सभी लोग बड़े उत्साह में हैं। भूल धूस और कंग देखी थे शोभा कहाँ कहाँ अस्तु जले बड़े सम्मान, महाप्रभु क्या कर रहे हैं, प्रेमोल्लास प्रेमोल्लास से शोधन लय कृष्ण, झाड़ू लगा रहे हैं और कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसलिए हृदय कैसे शोधन हो रहा है, झाड़ू से हो रहा है ना, कैसे नाम के द्वारा। अच्छा मान लिया कि कोई आदमी 10 वर्ष तक नाम कर रहा है और हृदय शोधन नहीं होता, इसका मतलब क्या, क्या मतलब, दस वर्ष तक झाड़ू दे रहा है, हरिनाम कर रहा है, हरी कथा भी शोभन कर रहा है, हरी कथा भी सुन रहा है और ठाकुर जी की पूजा भी हो रही है। और हृदय शोधन ने यह क्रोध जैसा ही तामसिक भाव लड़ाई झगड़ा दिया तो मतलब है जैसे झाड़ू दिया नहीं। इसलिए महाप्रभु जी शोधन कर रहे हैं, महाप्रभु खुद आंखों से आंसू निकल रहे हैं और कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। भूलि भूषा तनु देखी थी, जब झाड़ू दे रहे हैं तो झूला उठती है, धूली उठती है, सोने से क्या होगा,
सिर भर जाएगा।
एक तो सोने जैसा सुंदर बहुत पर अब धूली पर लग रही, एक श्यामला रंग उस पर धूली लग रही, वो कौन कृष्ण, वो धूली के समय। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु धूली लग रही और भी सुंदर दिख रहा है। भोग मंदिर शोभन पर, भोग मंदिर मैंने वही जो करता है उसी मनुष्य का प्रांगण सफल आवास क्रमे परिता शोभन, जितने भी घर हैं सबका उन्होंने शोधन किया है। त्रिवीर धूलि छीतू छीतू मैंने सब एकत्र कर लिया, बहिर बार से लैया खिलाए बाहर कर लिया। महाप्रभु जी ने अपने बहिर बार में ले और ले करके मंदिर से बाहर दूर फेंका है, निकट नहीं, निकट फेंकने से क्या होगा,
हवा से
हवा से उतर कर फिर आ जाएगा। अर्थात अभी थोड़ा सा बाहर किया, अच्छी तरह से दूर नहीं भगाया तो फिर हवा लग करके, हवा मैंने गंदे लोगों की हवा लग करके फिर वो आ जाए। इन्हें खूब अच्छी तरह से साफ करना है। यही मत भक्तवान परी निज बासे तीन भूली बाहे फैलाए परम हरि से, प्रभु का के पर्व करिया छ संबंध। प्रभु जी कह रहे हैं भाई मैं ये देखना चाहता हूं कि किसने कितना साफ करके कितना कितना भूली बाहर किया, फेंको मत अभी, अपने अपने कपड़े में लेकर के रखो, मैं देखूंगा किस लिए किया। सब कुछ में ये परिश्रम करके इसलिए देखना चाहिए। अब लोग मन से साफ करने लगे, झाड़ू देख करके अपना अपने कपड़े में रख। प्रभु कहे सबा झाटान बोझा एकत्र करिला, सबा है महाप्रभु बोझा देख, सबको एकत्र करके कहा जी अपना तुम यहाँ रखो, अपना रखो, सब लोगों ने रखा। महाप्रभु जी ने जो झाड़ू दिया महाप्रभु जी का सबसे अधिक, तब महाप्रभु जी ने अधिक परिश्रम किया। अभ्यंतर करीला मार्ग इस प्रकार से झाड़ू देखो के साथ साथ हम लोग भी ऐसा करें, अच्छी तरह से परिश्रम से अपने ये मंदिर तो साफ है, इसको अधिक साफ नहीं करना किंतु हृदय मैला है। भक्ति के विरोधी जितनी चीजें हैं सबको छोड़ो। कल तो बतलाया ना उद्धव जी व्यक्ति भी जो भक्ति का विरोधी बातें थी वो छोड़ दिया, जो कि भक्ति है साधारण। क्या भक्ति है, देवताओं का भजन करना भी एक ही तो भक्ति ही है, किंतु भगवत भक्ति के लिए छोड़ना पड़ेगा दूसरे दूसरे देवताओं को और विशेष विशेष भक्तों को विशेष विशेष चीजें भी हटानी पड़ेगी। यहाँ तक कि द्वारका में रुक्मिणी जी और रुक्मिणी के साथ में जो कृष्ण है उनको भी छोड़ना पड़ेगा, और भी बहुत सी चीजें हैं छोड़ना जो मधु भाव के विरोधी भाव में हैं, अनुकूल नहीं है, उन सबको छोड़ना है। सब वैष्णव लैया जब दुई बार शोधी लो देखी महाप्रभु मने संकोष, दो दो बार मंदिर को साफ किया, अब कहीं भी कोई गंदी चीज नहीं रही, महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए। अब केवल पांच सात आदमियों को छोड़ करके बाकी सब लोग गए इंद्र सुनोवर और वहां स्नान किया और स्नान करके घट में पानी भरा और पानी भर करके सब दिया। लाखों आदमी एक दो नहीं फिर जाइए, सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने नहीं धोएंगे, किसको देंगे? महाप्रभु जी के हाथों में। महाप्रभु जी अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद प्रभु जी, राय रामानंद जी, स्वरूप दामोदर जी, दामोदर पंत, ये सब लोग हैं, ये मंदिर के पास में वहां पर खड़े हैं। और बाकी सब लोग लेकर के हरे कृष्ण कहते हुए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए पानी भर कर पिला रहे हैं। सब लोग महाप्रभु जी को जल आनी बोले, जब महाप्रभु कहिलो तबे सब घट आनी प्रभु आगे। ऐसा नहीं पानी भर कर लिया, धोना आरम्भ कर दिया, प्रसाद आ गया ना पत्ते पर दे दिया गया, बस जब भी प्रसाद सामने आए ना तभी खाने लग गए। ऐसा मत करो, क्या करना चाहिए? उसमें जो सबसे प्रधान व्यक्ति बैठा है वो सबको आदेश दे, ठाकुर जी का जय दे, महाप्रसाद का जय दे। इसके बाद में जब देखे, जब उन्होंने ग्रास उठाया, एक ग्रास दो ग्रास या पांच ग्रास खाया, तब हम लोगों को काम करें। और तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि उन्होंने खाए। जब वो आदेश दे तो एक साथ में हजार बार नहीं चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए। प्रसाद पाने के समय में बातचीत नहीं करना चाहिए, हो हल्ला बातचीत करना, लड़ाई करना, ये सब चुपचाप भगवान की सेवा कर रहे हैं ऐसा समझ करके। जैसे गुरु जी की सेवा करते हैं तो भंड भंड बकते हैं, ठाकुर जी के मंदिर में अर्चन कर रहे हैं तो बक बक करते हैं, ऐसे ही प्रसाद सेवा में भी चुपचाप शांत चित्त से बैठ करके मैं भगवान की महाप्रसाद की सेवा कर रहा हूँ। और यदि बोलना भी है तो हरे कृष्ण, इसके अतिरिक्त नहीं, बीच बीच में प्रसाद की ध्वनि जगाना चाहिए, साधु सावधान, क्या सावधान, महाप्रसादे